نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مختصر صحیح بخاری اس میں کتاب الویو ہم کر رہے ہیں اسی کو کنٹینیو کریں گے پیج نمبر ہے 630 اور حدیث کا نمبر ہے 1016 باپ ہے 29 برکت سا نبی ہی و مدی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سا اور مد بابرکت ہے عن عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابراہیم حرم مکہ و دار لہا وحرمت المدینة کما حرم ابراہیم مکہ ودعوت لہا فی مدیہا وسائیہا مثل ما دعا ابراہیم علیہ السلام لمکہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی اسی طرح میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں اور میں نے مدینہ کے مد اور سا میں برکت کی دعا کی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ تو کیا پتہ چلا، پچھلی حدیث میں ہم نے خیر و برکت کی بات پڑھی تھی غلے کی، تو اس صورت میں ممکن ہے کہ جب اہل مدینہ کے مد اور سا سے ناپتول کیا جائے، آج بدل دیا گیا آپ کو پتہ کلوز اور لیٹر جو بھی ہیں، کیونکہ چیزیں جو باہر کے ملکوں سے آتی ہیں، لیکن سا اور مد کے اندر ناپیں گے تو پھر اللہ کے نبی کی یہ دعا ملے گی۔ سا کیا ہوتا ہے؟ حجاز میں 5 × 1.3 رتل ہوتے تھے، ایک رتل 90 مثقال کا ہوتا ہے، اس حساب سے ایک سا کے 480 یعنی 480 مثقال ہوتے ہیں، ایک مثقال 4.12 ماشے کا ہوتا ہے، تو اس طرح 480 مثقال کے 2160 ماشے ہوتے ہیں، چونکہ ایک تولے میں 12 ماشے ہیں تو 12 پہ تقسیم کریں تو ایک سا حجاز کے وزن کے مطابق 180 تولے کا بنتا تھا۔ آج کے اشاری نظام کے مطابق دیکھیں 3 تولے کے 35 گرام ہوتے ہیں، اسی حساب سے 180 تولہ وزن کے 2100 گرام بنتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سا حجاز کے وزن کے 2 کلو 100 گرام پرانے وزن کے مطابق 2 سے 4 چھٹانک ہے۔ یہ ساری کہانی کیوں سنا رہی ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ اچھا یہ پتہ نہیں یہ چھوٹی وزن ہے، اچھا پھر دودھ لینے جائیں گے تو کتنا ہوگا اور دال کا پیکٹ کتنے کا لیا ہے، تو بہرحال حجاز کے وزن 2 سے 10 چٹانگ 3 تولے 4 ماشے تقریباً 2.5 سے 2.5 کلو کے برابر تھا۔ تو فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ اگر سننا سمجھتے ہوئے یہی ٹرمز یوز کی جائیں تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو مکہ سے بھی پیار تھا اور مدینہ سے بھی۔ ما یوز کرفی بئی تعامد والحکرتی، غلہ بیچنے اور اس کے ذخیرہ کرنے کے متعلق کیا بیان کیا جاتا ہے؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیت الذین یشترون الطعام مجازفۃ یضربون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیعوہ حتی یووہ الی رحالہم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تخمینہ کیا ہوتا ہے؟ گیس، اندازہ لگانا، تخمینے سے یعنی درختوں پہ پھال لیتا، اب آپ گن تو نہیں سکتے یا اس کو اتار کے وزن تو نہیں کریں گے، تو گن لیتے تھے 1 2 3 4 اچھا 10 سیب ادھر ہیں 5 ادھر ہیں، اس طرح تو انہیں تخمینے سے غلہ بیچتے تھے، انہیں میں نے پٹتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ وہ اس پر قبضہ کر کے اپنے گھروں میں لے آئیں پھر فروخت کریں۔ احتکار کہتے ہیں عربی زبان میں ذخیرہ اندوزی کو، یہ اس وقت منع ہے جب لوگوں کو غلے کی ضرورت ہو تو مزید مہنگائی کے انتظار میں اسے مارکیٹ میں نہ لایا جائے۔ اگر مارکیٹ میں غلہ دستیاب ہے تو ذخیرہ اندوزی منع نہیں، یعنی اسٹاک کر دے کوئی اپنا مال لے کے زیادہ رکھ لے گودام میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلم میں ہے کہ ذخیرہ اندوزی وہی کرتا ہے جو خطا کار ہوتا ہے۔ امام بخاری کا رجحان احتکار کے جواز کی طرف معلوم ہوتا ہے، یہ بھی ثابت ہوا کہ خریدی ہوئی چیز پر قبضہ کیے بغیر اسے فروخت کرنا جائز نہیں۔ یہ آج بہت نگلیکٹڈ رول ہے مسلمانوں کے ملک میں، ادھر زمین کا ٹکڑا لیا ادھر بیچ دیا، نہ ہاتھ میں بھی آیا نہ لیا، چیز ادھر سے لے کے باتوں میں فون پہ بیٹھ کے، کئی لوگ گھر میں فون میں بیٹھ کے فون پہ کام کر کے سیٹھ بنے ہوئے ہیں، کروڑ پتی ہوئے ہیں، اور وہ کسان جو بیچارہ بیج سے دانہ آنے تک اتنی محنتیں کرتا ہے اس کو 2-4% ملتا ہے اور ان کو کئی دفعہ ڈبل ملتا ہے ہول سیل کا ریٹ فلاں کا، یہ شرم جائز نہیں ہے۔ اس پہ اگر کسی کے بھی بزنس میں ایسی چیز ہے تو اس پہ ضرور ریسرچ کرنی چاہیے، यानी रिस्क बहुत होता है इसमें ना, चीज कमी बेशी की, चीज फल खराब हो जाए, फसल ना हो, और आपने बस लोगों को आगे से आगे चीज कर दी, जब तक चीज आपकी नहीं। ये सेलफोन ना मेरा है ना, तो अब मैं इसको आपको कह सकती हूँ मेरे से खरीद ले, इट्स ओके। बट ये भी मुझे आया ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं है, मैंने नेट पे चेक किया, अच्छा ये 400 का मिल रहा है। मैं कहती हूँ अच्छा अगर मैं ले लूँ तो मैं आपको ये 450 का बेच दूँ, आप ठीक है। मैं नहीं ले रही, अभी लिया नहीं, वहीं पड़ा हुआ है। मैं आपसे कहती हूँ ये सेलफोन लेना कितने का, मैं 450, अच्छा 450 का ले लूंगी, फिर मैं आपको कहती हूँ दे दें, तो अभी मेरा नहीं बना। फिर एक हदीस के मुताबिक आपको दूं, ये जायज नहीं, पता नहीं आपके जाने तक पता चला वो बिक गया, अब आप 450 में कैसे देंगी। तो ये सारी चीजों में धोखा भी होता है बाज दफा, और अनप्रिडिक्टेबल है, हालात बदल, सर्टिनिटी नहीं होती इस चीज में। फिर उसके बाद इब्ने अब्बास कई फजा का काला ज़ाका दिराहिम भी दिराहिमा व तामन मुरजाउन। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई शख्स गल्ले को इस पर कब्जा करने से पहले फरोख करे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से दरियाफ्त किया गया ऐसा क्यों है, उन्होंने फरमाया ये तो ऐसा ही है जैसे रुपया रुपये के बदले फरोख किया जाए और गल्ला उधार, गोया एक शख्स ने गल्ला खरीदा जो मौजूद ही नहीं था। तकमीले मिल्क बगैर कब्जे के नहीं होती, बिल्कुल वही बात है। मसलन आप देखिए, एक आदमी ने कोई चीज़ 20 रुपए में खरीदी और रकम अदा कर दी, लेकिन चीज़ पर कब्जा करने से पहले मालिक को ही 30 रुपए में फरोख्त कर दी, तब गोया 20 रुपए को 30 रुपए की इवज दिया, ये सूद है। और इस चीज़ को तो दरमियान में बतौर बहाना और हीला इस्तेमाल किया गया, यानी उसी की चीज़ है जिसे आपने पहले खरीद ली, फिर उसके बाद आपने उसको दोबारा 10 रुपए महंगी करके दे दी। तो मुझे तो ये सब पढ़ाते हुए, जिस दिन से ये बात शुरू हुआ है, मैं क्रिटिकली चीज़ों को देखती हूँ, क्योंकि चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द ट्रेडिंग ही तो होती है, या हम ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं। तो कारोबार के अंदर भी, हलाल कामों में भी बाज़ दफ़ा बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। अल्लाह ताला हमारे पेट में कोई ऐसा लुकमा ना डाले कि जो हमारी दुआओं की कबूलियत के रास्ते में रुकावट बने। عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاوها وبر بالبر ربا إلا هاوها. غور سے سنیے گا اس میں آپ کے مطلب کی بات ہے. والبر بالبر ربا إلا هاوها والتمر بالتمر ربا إلا هاوها والشعير بالشعير ربا إلا هاوها. सारे सूद से मुतल्लिक हुक्म है इसमें। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया सोना सोने के इवज फरोख करना सूद है। तो हमारी तो अक्सर ही 80% खवातीन सोने की चूड़ियाँ ले जाती हैं ज्वेलर के पास, कहती है ये लेके नहीं दे दो, सोने के बदले सोना नहीं होगा, कैसे इसको भी देखिएगा। मगर जबकि दस्त बदस्त हो, यानी आप अपनी चूड़ी लें, आप पहले उसको बेचें, वो बेच के उसके पैसे आप अपने हाथ में कर लें, फिर उन पैसों से कुछ खरीद लें, फिर ठीक है, पेमेंट सोने की जूड़ियों की सूरत में करें। आपको तो सुनारों के दो कीमतें होते हैं, आप जाके पूछे ना, तो ये बेचने को कहते हैं अच्छा इसके बदले में हमसे कुछ लेंगे या बस ये बेच के देनी है, दोनों की कीमत फर्क है। तो वो यही असल में बीच का फर्क यही होता है। मगर जबकि दस बदस्त हो तो दुरुस्त है, और गेहूं के इवज गेहूं फरोख करना सूद है, लेकिन दस बदस्त हो तो जायज है। इस तरह खजूरों के इवज खजूरें और जौ के इवज जो फरोख करना सूद है, लेकिन दस बदस्त हो तो जायज है, यानी दोनों साथ ही साथ। मतलब ये कि बदले पर तरफैन पर कब्जा जरूरी है, एक चीज ले के दूसरी दे और फौरन पैसे दे दे। जैसे पीछे आपको कहता था कि उधार सोना नहीं खरीदा जा सकता, उसमें फिर कमी बेशी का खतरा होता है। फिर इसी तरह से ये भी पता चलता है कि जौ और गंदम दो अलग अलग जिनसे हैं। ला यबा अला बैन अखीही वला यसुम अला सौमी अखीही हत्ता याजन लहू औ यत्रुक। कोई आदमी अपने भाई की तिजारत यानी बै पर बै ना करे, यानी किसी का सौदा चल रहा था, आप जाके बीच में पड़ गए, ना ही इसकी कीमत पर कीमत लगाए यहाँ तक कि वो इजाजत दे या इसे छोड़े। अच्छा यहाँ घर कैसे लेते हैं लोग, क्या बोलते हैं उसको, कोई बिल्डिंग लेनी हो, बूत देते हैं, बूत और इंग्लिश में उसको बिट कहते हैं, यही गलत तरीका, बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि एक ने कीमत लगाई है ना, अब दूसरा उसे ऊपर लगा रहा है। अल्लाह के नबी क्या कह रहे, एक का सौदा चल रहा है या वो यस चंदो कह दे फिर दो। तो ये सरासर अन इस्लामिक है, पूरा दुनिया सिस्टम देके दुनिया में प्रॉपर्टीज बिकी इसी तरह से रही है। फिर इसी तरह किसी का रिश्ता डला हुआ है तो दूसरा नहीं कर सकता उसके लिए जब तक यस ना हो। हमारे खानदानों में तो ये होता है जहाँ एक रिश्ता आता है तो फिर इकट्ठे चार आ जाते हैं, पता लगता है ना उनका रिश्ता और है, वो जल्दी से तुम भी डाल दो, तुम भी सोच रही थी, तुम भी नहीं कर सकते। घर वालों को पहले एक को डिसाइड करने दीजिए, यस या नो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो देखिए हम कहाँ कितना दूर हैं इल्म से। और ये बातें आज आप करें लोग कहेंगे हैं ये भी होता है, और आप देखेंगे हर चीज के पीछे हिकमत है। हमारा दीन लोगों की दिल आजारी, लोगों से ताल्लुकात के बिगड़ने से हमें बचाता है, और ख्वाहिश ये हमारी होनी चाहिए कि हम हमेशा फेयर डील्स करें और अल्लाह ताला हमें सबसे ज्यादा इसकी तौफीक अता फरमाए। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللياد لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما في إنائها। एक और मैसेज भी आ गया इसमें, क्या हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई मुकामी किसी बैरूनी के लिए फरोख्त ना करे, और ना कोई धोखा देने के लिए कीमत बढ़ाए, और ना ही कोई शख्स एक भाई की बै पर बै करे, और ना ही अपने भाई की मंगनी पर मंगनी का पैगाम भेजे। अंडरस्टैंड, किसी की लड़की के लिए पैगाम भेजा हुआ है तो अब आप उस लड़की को नहीं भेज सकते, और ना ही कोई औरत अपनी बहन की तलाक की ख्वाहिश करे इस नीयत से कि इसके मुंह का नवाला इसके मुंह में पड़ जाए। क्या मतलब है? इसको उधर से तलाक हो ताकि उस फिर वो मर्द से मैं शादी कर लूं। देखिए जरा कैसी गुमराही आज फैली हुई है। कोई मुकामी किसी बाहर से आने वाले के लिए फरोख्त ना करने का मतलब यह है कि देहाती लोग जो अपनी अशिया अहले शहर से सस्ते दामों फरोख्त कर जाते हैं, इनसे कोई शहरी कहे कि तुम इसे फरोख्त ना करो बल्कि मेरे पास रख जाओ, मैं महंगे दाम इसे फरोख्त करूंगा, तो ऐसा करना मना है। इससे शहर वालों को नुकसान होता है। और आज हमारे कल्चर में क्या मारूफ है आपको था? जिन मुल्कों में टमाटर उगता है वहां बिकता ही नहीं है। अपने मुल्क में आपको सब्जी बाजवा नहीं मिलेगी और बाहर आती है। आम देख लीजिए, जितना अच्छा आम बाहर आता है अपने मुल्क वालों के लिए नहीं होता। इसी तरह दुनिया में ऐसे मुल्क है, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ के सुनाई हुई है तफसीर में, कि जिन मुल्कों में इतना ज्यादा कारामत नाज उग सकता है वो उनको चॉकलेट पे लगा के रखा हुआ है ताकि सारा चॉकलेट हम बाहर वाले खरीद लें, और उनके पास रोटी और आटा भी नहीं है, वो फिर बाहर से खरीदते हैं। तो इस वक्त बहुत ज्यादा मोनोपोली है कुछ लोगों की। तो अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि किसी पे जुल्म ना हो। असल जो दीन का मुझे रंग समझ आया ना, ना तुम किसी को तकलीफ दो ना तुम्हें कोई दे, ला दरर वला दरार, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। बैयुल मुजायदती, नीलामी की बै का बयान, चले नीलामी भी सुन ले। क्या कहते हैं इसको? ऑक्शन, चीजें रख के लोग की बोलियां लगाते हैं उसको भी सुनते हैं। عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتره نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, एक आदमी ने गुलाम को अपने मरने के बाद आजादी का इख्तियार सौंप दिया, मगर वो शख्स कुछ मुद्दत के बाद मुख्ताज हो गया, यानी अपनी जिंदगी में एक किस्म की नीयत कर ली थी कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा गुलाम आजाद है, लेकिन जिंदगी में ही वो गरीब हो गया, यानी उसको गुलाम की जरूरत पड़ गई, और गुलाम उस दौर में कमोडिटी थी, बिकते थे, पैसा मिल जाता था। खैर, नबी सल्लम ने गुलाम को पकड़कर फरमाया, इस गुलाम को मुझसे कौन खरीदता है? हजरत नईम बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने इसको इस कदर माल के वज़ खरीद लिया, फिर आपने वो कीमत इसके मालिक को दे दी। तो नीलामी अगर कीमत बढ़ाने के लिए की जाए तो मना है, अगर खरीदने के लिए हो तो दुरुस्त है। जैसा कि हदीस में कि इस गुलाम को नीलामी के तौर पर हाजरीन के सामने पेश किया, किसे कौन खरीदा? बात समझ गए? यानी आप कहते हैं कि ये मेरा फोन है, आप कितने का खरीदती हैं? तो आप कहेंगी तो ठीक है ले लें, लेकिन आप सिर्फ ऐसी कीमत बोल दें जिसे कीमत बढ़ जाए, खरीदना नहीं आपने, फिर दूसरा उससे ज्यादा ही बोलेगा ना, फिर कीमत चढ़ती जाएगी, ये दुरुस्त नहीं है। यानी कम कीमत की चीज ज्यादा कीमत पे ना बने। बैयुल गररी व हबलिल हबलती, धोखे और हबलुल हबला की बै। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहान बैयुल हबलिल हबलती व कान बैयन यतबायउहु अहलुल जाहिलियति कान रजुलु यबताउल जजूरा इला أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबलुल हबला की बैत से मना फरमाया। ये क्या होती है? ये एक ऐसी बैत थी जो जमाने जाहिलियत में की जाती थी। बाई सूरत ये कि एक शख्स ऊंटनी इस वादे पर खरीदता था ताकि जब वो बच्चा जने, फिर वो बड़ी होकर बच्चा जने, तब इसकी कीमत अदा करूंगा। समझ रहे हैं? अभी ऊंट बच्चिया है, अब वो कहता है कि ये जब बड़ी होगी फिर इसका एक बच्चा होगा फिर दूसरा होगा फिर इसकी कीमत दूंगा, यानी अभी नहीं दे रहा, तो ये जायज नहीं है। चीज हाजिर की है उस पे बात होती है। धोखे की बह ये कि एक परिंदा हवा में उड़ रहा है या कोई मछली दरिया में जा रही है, इसे पकड़ने से पहले ही खरीदो फरोख करना। मस्कुरा हदीस में जिस बह का जिक्र है इसमें भी इस किस्म का धोखा है। मुमकिन है कि ऊंटनी या इसका बच्चा आगे जने या ना जने। अब आपको तो नहीं पता ना कि इसके बच्चे होंगे कि नहीं, तो लिहाजा कीमत फिर आपने ज्यादा ले ली। अन्नहयु लिल बाई अल्लाह युजफ्फिल अल इबिला वल बकरा वल गनम। बाय यानी खरीदने वाले को जायज नहीं कि वो किसी को धोखा देने के लिए ऊंट गाय और बकरी के थनों में दूध जमा करे। बाय कौन होता है? बेचने वाला, यानी कई दिन तक उनका दूध नहीं निकालते। अब वो बकरी या गाय दूध बेचने गए तो वो बहुत थनों में दूध है, अब जब निकालेंगे तो ज्यादा निकलेगा ना, तो लेने वाला सोचेगा ये रोज इतना देती है पर उसने इतना नहीं दिया, वो आज इसलिए दिया कि 2 दिन से नहीं निकाला था, तो ये धोखा हो गया। देखिए इतना सा धोखा भी बर्दाश्त नहीं है, कहाँ बड़ी बातें होंगी। अनबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مسرة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سقطها ففي حبلتها صاع من تمر। हजरत अबू हुरैरा رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई दूध बस्ता बकरी को खरीदे तो इसका दूध धोने के बाद अगर वो इसे पसंद हो तो रख ले, अगर पसंद ना हो तो इसके दूध के इवज सा भर खजूरें दे दे और इसे वापस कर दे। यानी दूध निकालने के बाद अगर उसको बकरी नहीं पसंद है तो वापस कर सकता है और जितना उसका दूध निकाला है उसके बदले में खजूरें दे दे। तो दूध बस्ता यानी दूध देने वाले जानवर को वापस करने की सूरत में खरीदने वाले को चाहिए कि दूध के बदले एक सा खजूर भी जानवर के साथ वापस करे। अहनाफ ने इस हदीस को खिलाफे क्या समझते हुए काबिल अमल नहीं समझा। नीज ये भी कहा कि हजरत अबू हुरैरा गैर फकीह थे नाउज़ुबिल्ला, लिहाजा इनसे मरवी रिवायत खिलाफे क्या सोने की सूरत में काबिल कबूल नहीं। हालांकि हजरत अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह से एक हुक्म नकल किया जो वाजिब तामील है, तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसा कर लेना चाहिए। बैयुल अब्द ज़ानी ज़िना कर गुलाम की बै, यानी किसी के गुलाम ने ज़िना किया तो क्या उसको बेच सकते हैं? وعنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يسرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يسرب ثم إن زنت ثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना अगर लौंडी जिना करे और इसका जिना जाहिर हो जाए तो इसका मालिक इसे कोड़े लगाए, सिर्फ डांटने पर इक्तफा न करे। अगर फिर जिना करे तो फिर इसे कोड़े लगाए, जजर व तंबी पर इक्तफा न करे। और अगर तीसरी मरतबा जिना करे तो इसको फरोख कर दे ख्वाब बालों की रस्सी ही के बस। यानी वो काबिले भरोसा नहीं है, क्या पता चला कि जिनाकारी एक ऐब है। खरीदारी साहब के मुत्तले होने पर इस लौंडी या गुलाम को वापस कर सकता है। अगर हदीस में लौंडी का जिक्र है लेकिन गुलाम के ऊपर भी यही हुक्म होगा। अहनाफ लौंडी के मुतालिक ये कायदा दुरुस्त कहते हैं लेकिन गुलाम के मुतालिक इसको नहीं मानते। तो आप ये तो समझ ही रहे ना कि बारीकियां कितनी है, ये इतना आसान नहीं है। आप देखिए किसी मुल्क में कोई स्टोर खोलता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, कितनी सर्टिफिकेशन होती हैं, कहीं NOC लो, कहीं फुलां, कहीं चेकिंग करवाने आते हैं, कोई फुलां चीज़ें, होटल खोलेंगे तो कहीं किचन चेक करेंगे, आपके बाथरूम करेंगे, आपका एग्जिट देखेंगे। तो क्या इस्लामिकली ये चीज़ें हम जान रहे होते हैं? इसमें हम कहते हैं शोक है ना, थोड़ी सी शराब भी रखी है तो क्या फ़र्क पड़ता है जी। तो ये सारी बातें बेइल्मी की बात है ना, ठीक है। चलिए सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।